इसी तरह अब्दुल्ला बिन मुबारक जो थे वो बिस्तरे मर्ग पे थे, तो एक आदमी उनके पास बैठा हुआ था, उनके लिए कुछ इल्मी मजामीन लिख रहा था। तो किसी ने कहा, इस हालत में भी आप ये इल्म सीख रहे, सिखा रहे और बता रहे हैं उनको, और कुछ मजामीन लिखा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इस हालत में भी आप उस पे हैं, यानी बिल्कुल, यानी एक बिस्तरे मर्ग पे पड़े हैं। इरशाद फरमाया, शायद कोई फायदेमंद बात ऐसी मिल जाए जो पहले आज तक ना मिली। ये हो सकता है मुझे आज इल्म में कोई बात ऐसी समझ आ जाए, कोई ऐसी मिल जाए जो पहले ना मिली। तो इसी तरह माज बिन जबल फरमाते हैं कि इल्म सीखो, क्योंकि इसका सीखना नेकी है, इसकी तलब इबादत है। ये जो ये आप तलबे इल्म के लिए आए हैं ना, तालिबे इल्म का मतलब क्या होता है? ये बड़ा प्यारा वर्ड है वैसे उर्दू में ना, तालिबे इल्म। आप तालिबे इल्म है ना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट से तो नहीं इतना कुछ पता चलता, आप तालिबे इल्म। तालिबे इल्म क्या मतलब हुआ? इल्म तलब करने वाला, इल्म चाहने वाला। वाकई इल्म तलब करने वाले हैं, हमारे बंदे के तो नहीं बैठे थे। आपको तो फिर इल्म की हिर्स होनी चाहिए, इल्म का शौक होना चाहिए। देखिए हर चीज में, दुनिया की हर चीज में कनात अच्छी है, लेकिन इल्म में हिर्स अच्छी है। इल्म के लिए लालच करें, उसके लिए ये ना करें इतना एक दफा पढ़ तो लिया, अब और क्या पढ़ने की जरूरत है। नहीं, उसमें लालच होना चाहिए और दुनिया की चीजों में कनात होनी चाहिए। हमारा ऑपोजिट है, इल्म में माशाल्लाह हम बहुत कनात वाले। तो बस काफी है ना, नहीं काफी है, ज्यादा ना हो जाए। अभी हम आए ही नहीं क्लास में, पहले ही हमें ये फिक्र पड़ गई कहीं ज्यादा ना दे दें कुछ काम, कहीं ज्यादा ना हो जाए, कहीं बर्डन ना पड़ जाए हमको। पहले ही खौफ ज्यादा है दुनिया के मामले में, दुनिया आती भी देख के खुश होते हैं, इनकी कदर नहीं है ना अभी हमें। फिर आगे फरमाया, ये लंबी बात है तो आप ये सारी बात सुने, इसका तकरार करना तस्बीह का दर्जा रखता है। तकरार करना क्या, यानी इसको दोहराना, इसकी रेपिटेशन, इसको रिवाइज करना, एक दूसरे के साथ इसका तस्करा करना, जिक्र करना। जैसे आप लोग माशाल्लाह अपने ग्रुप में बैठते हैं, इसकी तकरार करते हैं ना, रिपीटिशन करते हैं, उसी को रिवाइज करते हैं, तो ये किसका दर्जा रखता है? तस्बीह का। इसमें गुफ्तगू करना, मुजाकरा करना, तहकीक करना जिहाद है। अब कहते हैं ना औरतों के लिए तो क्या जिहाद है, देखो हमारे लिए ये है। हमें बढ़ बढ़ के उन कामों का शौक होता है कि जो आदमियों को मिले वो हमें क्यों नहीं मिल जाते, हम वो करना चाहते। देखें आपके लिए जो वो है, आप इन चीजों को, इन कामों को करके वही फजीलत, वो दर्जे पा सकते हैं। फिर और किसी जाहिल को इसका सिखाना सदका है। अगर आपने किसी को, जाहिल को यानी जो ला इल्म है, जिसके पास इल्म नहीं है, अगर आपने उसको ये सिखा दिया तो ये सदका है। और इसके अहल पर इसको लगाना कुर्बे इलाही का जरिया है, यानी जो इसका अहल है, जो इसका मुस्तहिक है, उस तक इसको पहुंचाना अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया बनता है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के करीब हो जाएं, तो इसके जरिए आप अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। सुन लो, इल्म अहले जन्नत के मरातिब का रास्ता है, यानी मर्तबे बुलंद करने का जरिया है। वहशत के वक्त उनका जरिया है, यानी जिस वक्त इंसान वहशत में हो, जैसे कहते हैं ना कभी बहुत वहशत ज्यादा हो रहा था, उस वक्त ये आपकी मानूस करने के लिए, जैसे कोई साथी होता है ना उस वक्त आपके साथ होता है, आप मानूस हो जाए, ये उसका उस वक्त के लिए। सफर में साथी और रफीक है, आप किसी सफर में भी चले जाए कोई भी नहीं आपके साथ, ये कुरान आपका साथी और रफीक है। तन्हाई में हम कलाम है, आप अकेले होते हैं ना, दिल घबराता है तो ये आपसे एक बात करेगा। खुशहाली में रहनुमा है और तंदरुस्ती में मददगार बनता है। खुशहाली है, आपको कोई खुशियां मिली हैं, बहुत पैसा मिल गया, बहुत कोई और अच्छी नेमत मिल गई, उसमें आपकी रहनुमाई करेगा कैसे खर्च करो, कैसे चलो आप। और अगर तंगदस्ती आ गई है ना, उसमें मददगार बनता है, क्योंकि सब्र का बताता है। आपके गम को दूर करने के लिए, आपकी तंगी तकलीफ दुख मुसीबत में आपका मददगार बनता है, आपके दिल को इतनी धारस देता है, तसल्ली देता है। मजलिस अहबाब में जीनत है, यानी दोस्तों में क्या है उनके लिए जीनत है, दोस्त इसको देख के खुश होते हैं। दुश्मन के मुकाबले में हथियार है, जब दुश्मन होता है उसके खिलाफ हथियार है, कैसे किस तरह से, कि इस कलाम के जो सच्चे इसको लेकर चलने वाले हैं ना, जब वो किसी से बात करेंगे तो उनके लिए ये हथियार साबित होगा, क्योंकि इसके जरिए वो गलबा पा जाएंगे। इसकी बतौरत अल्लाह ताला बहुत से लोगों को बुलंदी बख्शती है, और ऐसे बुलंदी देते हैं कि वो क्या बुलंदी उनको मिलती है इसकी वजह से, कि वो खैर के कामों में इमाम बनते हैं, कायद बनते हैं, लोग इनको फॉलो करने लगते हैं, लोग इनके बात की को फॉलो करते हैं, इनके जो अफआल हैं उनमें इनको फॉलो करते हैं, फरिश्ते इनकी दोस्ती की तरगीब देते हैं, फरिश्ते इनसे दोस्ती के ख्वाहिशमंद होते हैं, इन पर अपने पर फैलाते हैं, और हर खुश्क और तर चीज, हर खुश्क और तर चीज का मतलब क्या, सारी चीजें, सारी मखलूक हो गई ना, खुश्क है या तर है सब, और समंदर की मछलियां और जमीन के कीड़े मकोड़े, ये जो जमीन पे आपको बग चलते हुए नजर आते हैं, और जंगल के दरिंदे और जानवर, सब इसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए बताएं, सब आपके लिए इस्तग़फ़ार करने लगे कि अल्लाह इसकी बख्शिश करते हैं, इसलिए कि इल्म दिलों को जहालत की बजाय जिंदगी बख्शता है, आंखों की तारीकी में नूर बख्शता है, आंखें तारीक है ना, अंधी आंखों को नूर दे देता है, हमें तो पता ही नहीं किधर जाना है, टक्करे खाते फिरते हैं, गिरते पड़ते फिरते हैं, कभी इधर टकराते हैं कभी इधर, जिंदगी का रास्ता ही नहीं पता कि किधर कौन सा सीधा रास्ता है। सुभान अल्लाह, ये आंखों को नूर दे देता है, जिस्मों की कमजोरी को कुव्वत देता है, एक बंदे को नेक और अबरार लोगों के मकाम तक पहुंचा देता है ये इल्म। आप बनना चाहते हैं नेक और अबरार में से होना चाहते हैं, नेकोकारों में से, उनके मकाम तक पहुंचा देता है, दुनिया और आखिरत के आला दर्जात पर फाइज करता है। इसमें गौर व फिक्र करना, जैसे हम करते तफसीर पढ़ रहे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं ना, उसमें आयत की डेप्थ में जा रहे हैं, रोजा रखने के बराबर है। सुभान अल्लाह, इसका मुजाकरा, मुजाकरा मतलब क्या, डिस्कशन जो इसके ऊपर होती है, रात के कयाम के बराबर है, सिला रहमी इसी से कायम होती है। आप देखें जब इंसान कुरान की तरफ आता है ना, रिश्तों को जोड़ने की फिक्र करना शुरू कर देता है, उसे पहले परवाह ही नहीं होती तो कुरान की तरफ नहीं आता। हलाल और हराम की तमीज इसी से हासिल होती है, इल्म इमाम है, अमल इसका ताबे है, अमल बाद में आता है, यानी इल्म इमाम है, पहले इल्म आएगा तो अमल आएगा। और क्या है, ये सआदत मंदों को हासिल होता है, खुश नसीबों को हासिल होता है, और बदनसीब इससे महरूम रहते हैं। तो पूरी बात यहाँ तक मुकम्मल है, ये वो बड़े बदनसीब हैं जो इससे महरूम होते हैं। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, मेरे इल्म में कोई चीज जिहाद फी सबीलिल्लाह से अफजल नहीं, यानी जिहाद फी सबीलिल्लाह जो है सबसे अफजल चीज है, लेकिन सिवाय एक चीज के, एक चीज है जो इससे भी ज्यादा अफजल है, वो क्या है, तलबे इल्म, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी आगे, इल्म हासिल करना। अब ये कोई साइंस का, कैलकुलस, मैथ, ज्योमेट्री, इसका इल्म की बात नहीं हो रही, कुरान के इल्म की बात हो रही है। और फरमाया, खूब सुन लो कि इल्म को हासिल करो और इल्म के लिए ठहराओ, तहम्मुल और वकार सीखो। समझ आई ये बात, इल्म के लिए क्या सीखो, ठहराओ, आपकी तबीयत में ठहराओ आए, तहम्मुल आए, और वकार, इज्जत का ख्याल रखे, ऐसे ना बन जाए कि दूसरा बंदा देख के कहे कि पता ही नहीं चल रहा कि ये इल्म वाला कि जाहिल है, इसमें और दूसरे में फर्क ही नहीं है कुछ। वकार होना चाहिए आपके अंदर, डिग्निटी के साथ रहेंगे हम, और सब्र तहमुल होना चाहिए। ये नहीं कि आज ही मुझे सारा सिखा दो, अगली सूरह फातिहा की बिस्मिल्लाह पे बात हो रही है और आपको ये पढ़ी हुई है कि बस आगे क्या है और इस मसले का क्या हाल है और उसका क्या। नहीं, तहम्मुल तहम्मुल, और ठहराओ, तबीयत में ठहराओ पैदा करो, जल्दबाजी नहीं। अगली बात मैं पढ़ जाती हूँ, लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन आगे ये इसी तरह है तो इसलिए मुझे पढ़नी पड़ेगी पूरे। जिसे इल्म सीखो उसके सामने तवाज़ो इख्तियार करो, चले इसको तो आप छोड़ दें, और शागिर्दों के पास भी तवाज़ो से रहो, यानी अपने शागिर्दों के सामने भी आजी से रहो। यानी कि मैं बड़ी चीज हूँ और मेरे ये स्टूडेंट है, मैं इनके सामने बहुत बड़ी आलिमा बन के बैठ जाऊँ और ये मेरे अंडर हूँ और इसको डांटा और उसको इधर किया और हटो परे बचो इधर, ये नहीं, उनके सामने तवाज़ो इख्तियार करो। इसके जरिए उलमा का मुकाबला ना करो कि अब मुझे तो इससे भी ज्यादा आता है जी, आप क्या चीज हो। और जो बे इल्म है उनसे बहसें ना करते फिरो, यानी अब आप चल पड़े, अभी आपने एक सूरत सीखी नहीं, एक पारा किया नहीं, अब आप चल पड़े घर वालों के साथ बहसें कर रहे हैं। भाई जो नादान है, जिनको अभी इल्म नहीं है, और इससे बहस करने के लिए नहीं आपने इल्म सीखा। अब बहुत शौक होता है लोगों को कि जब नया नया इल्म आता है ना तो फौरन बहसें करने चल पड़ते, उसको बिठाया उससे बहस, हमें तो पता चला ये तो बिदत है, फलानी चीज तो हराम है, तुम तो ये कर रही हो, तो नहीं बहसें ना करें। अभी और ऐसा इल्म सीखो जो अल्लाह की इबादत में तुम्हारे लिए आर ना बने, और इबादत यूं करो जो तलबे इल्म में रुकावट ना, यानी इसके जरिए आप आपकी इबादत अच्छी हो जाए और इबादत भी ऐसी हो जो कि इल्म को तलब करने में रुकावट ना बने। ऐसे लोगों की तरह ना बनो जो इल्म को छोड़ के इबादत में लग गए, हत्ता के जब जिस्म सूख गया और खूब लागर हो गए तो तब वो तलवारें सोच के लोगों के मुकाबले में खड़े हो गए। ये बात खारजियों की हो रही, फवारे जिस लोग से अगर इल्म हासिल किया होता तो कभी ऐसा ना करते खारजियों ने जो किया था। और इल्म के बगैर अमल रास्ते से हटे हुए शख्स की तरह, वो जिस कदर भी भागेगा दूर ही होता जाएगा, उसमें से इसलाह की निस्बत फसाद की सूरतें ज्यादा निकलेंगी। तो इनसे पूछा गया है, अबू सईद आपने ये बातें कहाँ से हासिल की? कहने लगे मैं इल्म के इस रास्ते में 70 बदरी सहाबा से मिला हूँ और 40 साल तक वतन से बाहर सफर में बसर किए, तब मुझे ये इल्म की बातें मिली। किसी ने पूछा ना इतनी हिकमत की बातें आपको कहाँ से? तो देखो इन्होंने बदरी सहाबा से इल्म लिया और 40 साल तक अपने वतन से बाहर सफर में रहे इल्म के लिए। आपको तो बना बनाया पका पकाया घरों में मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। और हमारे में से कौन होता जो घर छोड़ के, हम तो साथ कहीं करीब कहीं जाना हो ना वहां तक भी नहीं पहुंचते, अपने मोहल्ले की मस्जिद में ही कोई तालीम की मजलिस हो रही है वहां तक नहीं जाते, तो कुजा ये कि हम घरों को छोड़ के हम कहीं सफर में निकल जाते हैं, और वो भी एक दो दिन नहीं 40-40 साल। हाँ कोई कैम्ब्रिज जा रहा हो, ऑक्सफोर्ड जा रहा है पढ़ने के लिए, तो उसके लिए दिल बहुत बड़े होते हैं, वालदेन के भी बहुत बड़े होते हैं, हमारे अपने भी होते हैं, और हमारी आंखें भी ऐसी बस मुतासर उतनी होती हैं, इतनी हम इम्प्रेस होते हैं कि आंखें खुल जाती हैं, अच्छा वहां पे गया हुआ है, हार्वर्ड से पढ़ रहा है, अच्छा फलानी जगह गया हुआ है, चाहे वो डॉर्म में रह रहा है चाहे कहीं, लेकिन हम कितने इम्प्रेस होते हैं। लेकिन इल्म के लिए अगर कोई घर में रहते हुए भी चंद घंटे निकाल ले तो हमें पता नहीं इतनी ज्यादा एक परेशानी हो जाती है कि क्यों ये अपना गोया के अल्लाह माफ करे अपना वक्त जाया कर रहा है। कितनी फजीलत है इसकी आप अंदाजा कीजिए, कितनी फजीलत है, कौन से कैम्ब्रिज में और हार्वर्ड में पढ़ने वाले को और प्रिंसटन में पढ़ने वाले को ऐसी फजीलतें हासिल होंगी जो इस शख्स को हासिल हो। लेकिन आज अफसोस है कि इसकी कदर ना हमने जानी जो इल्म ले रहे हैं, ना अपनी मुसलमान उम्मत के अंदर कोई इसकी कदरों कीमत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि अल्लाह ताला सिर्फ इल्म को कम्स करके नहीं उठाएंगे बल्कि इल्म वाले उठते जाएंगे, हत्ता के कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा। कि इल्म वाले उठते जा रहे हैं, अल्लाह ताला इल्म को कैसे उठा लेंगे, इल्म वाले ही बाकी रहेंगे, कोई ये इल्म सीखेगा ही नहीं जाहिर है, और जो इल्म सीख चुके थे वो दुनिया से रुखसत होते जाएंगे, तो पास दुनिया में कौन रह जाएगा, सिर्फ जाहिल रह जाएंगे। तो इसलिए इल्म हासिल करो और उससे पहले हासिल कर लो कि ये इल्म दुनिया से रुखसत हो जाए, इसे पहले ले लो। अब्दुल्ला बिन मुबारक बिन की मैंने आपको बिस्तर मरते होने की बात बताई है ना, उनसे किसी ने पूछा कि अगर अल्लाह ताला आपको बता दें कि आप आज शाम फौत हो जाएंगे तो आप क्या काम करेंगे बताएं, तो फरमाया मैं इल्म हासिल करूंगा, इल्म की तलब में वो दिन गुजारूंगा। देखिए इतने वो शौकीन थे इल्म लेने, इसी वजह से जिहालत नहीं थी वहां पे। आज जिहालतें, शिर्क, बिदात, उम्मत मुस्लिमा में बेहयाइयां, अल्लाह की नाफरमानियां, गुनाह खुल्लम खुल्ला, फहाशी, ये सब कुछ क्यों नजर आ रहा है आपको? इल्म ही नहीं, इल्म है ही नहीं। वैसे सारे अपने आप को बहुत आलिम समझते हैं, हर एक ही समझता है हमें सब कुछ पता है, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। मगर ये पूछा जाए कि कितना कुरान की तालीम आपको मिली है, कितना कुरान आपने सीखा है, कितनी दफा पढ़ा है, या कभी पढ़ा भी है, सीखा भी है या नहीं, किसी से, किसी टीचर से बाकायदा आपने सीखा है? तो नहीं, हमने बस हम पढ़ते रहते हैं, हम वो टीवी पे देख लेते हैं प्रोग्राम। ये इनके इनके हसूल के लिए इतनी कोशिश है कि वो टीवी पे कोई प्रोग्राम देख लेते हैं, और बाज तो वो भी नहीं करते, लेकिन सब समझते हैं। अच्छा ये एक ऐसा फील्ड है, बाकी उसमें नहीं, दुनिया के और किसी में कुछ कोई नहीं कहेगा कि मैं कोई आर्किटेक्ट की किसी ने तालीम नहीं ली होगी तो कोई नहीं कहेगा कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, कोई डॉक्टर नहीं है तो फिर कोई नहीं कहेगा कि मैं डॉक्टर हूँ किसी ने तालीम ना ली हो, इंजीनियर की तालीम नहीं ली होगी तो कोई नहीं कहेगा मैं इंजीनियर हूँ। लेकिन ये एक वाहिद फील्ड है जिसमें हर कोई कहता है कि मैं ही सबसे बड़ा आलिम हूँ, चाहे उसमें कुछ भी पढ़ाना हो। कहते हैं आप हमें पढ़ाएंगे, आप हमें क्या पढ़ाएंगे, हमें तो पहले ही सब कुछ आता है। लेकिन जो जितना जितना ये इल्म हासिल करता जाता है ना, उतना ही उसको ये अंदाजा होता है कि मैं कितना बड़ा जाहिल हूँ। यकीन करें, अभी आज आपको शायद लग रहा होगा हमें सब कुछ आता है, हम कुरान में क्या पढ़ेंगे, क्या ऐसी कौन सी खास बात होगी। जितना जितना आप पढ़ते जाएंगे ना, यकीन करें आपको हर स्टेप पे पता चलेगा हम कितने जाहिल थे, ये तो कुछ पता ही नहीं था। और जो दूसरी दफा पढ़ेंगे वो भी कहेंगे कि भाई ऐसे लगता है हमने तो पहली दफा पढ़ा, हमें तो ये बातें आज समझ आ रही है। तो शायद पिछली दफा जब आपने पढ़ा हो तो आपकी वो सिचुएशन ना हो जो आज आपकी सिचुएशन है, आज जिस सिचुएशन में है उसके मुताबिक वो आयतें जो आपको आज समझ आएंगी शायद कल समझ नहीं आएंगी। इसी तरह बाज लोग डरते हैं कि इल्म ले लिया तो अमल करना पड़ेगा, हाँ तो अमल तो हमसे होगा नहीं तो फिर क्या फायदा इल्म लेने का। तो इस बारे में भी ये सुने, ऑन बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह कहते हैं कि एक आदमी अबू जर गफारी की खिदमत में हाजिर हुआ, कहने लगा मैं इल्म हासिल करता हूँ मगर मुझे डर लगता है कि अमल नहीं हो सकेगा और फिर इल्म तो जाया हो जाएगा। आपने इरशाद फरमाया इल्म को अपना तकिया बना लेना, इससे बेहतर है कि तू जहालत को अपना तकिया बना, यानी इल्म लेके रहना इससे बेहतर है ना, ये ज्यादा बेहतर है कि तू जाहिल रहे इस खौफ से कि भाई अमल नहीं होगा। इससे बेहतर अपने आप को समझ रहा है कि मैं जाहिल ही रहूं, उससे बेहतर है तू इल्म तो लो, जहालत से बेहतर है। फिर वो शख्स अबू दरदा के पास गया और अपनी बात दोहराई तो अबू दरदा ने फरमाया लोगों का हशर उसी हालत में होगा जिस पर वो मरे होंगे, इल्म वाले को इल्म वाला उठाया जाएगा और जाहिल को जाहिल उठाया जाएगा क़यामत के दिन। तो जिस स्टेट में हैं आप उसी स्टेट में उठेंगे। इसी तरह बाज लोगों को जॉब्स बहुत प्यारी लगने लगती हैं, पैसा और वो ज्यादा बड़ी चीज लगने लगता है कि ये इल्म तो बाद में भी ले लेंगे कोई बात नहीं, पैसे अभी कमा लें। फौरन लोगों को माशाल्लाह जॉबें भी मिलना शुरू हो जाती है ना जब वो कुरान की तरफ आते हैं, क्योंकि शैतान तो एक्टिव है और अल्लाह ताला आजमा भी लेता है कि कौन इनमें से है जो साबित कदम रहते हैं, जो वाकई जो आज आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी नई रजिस्ट्रेशन आई, याद रखिएगा अल्लाह आजमाएगा, आपको टेस्ट करेगा, कौन है इनमें से जो मेरे कलाम के काबिल है और कौन खसो खाशाक है। ऐसे ही है बस, तीन के वो जो नहीं ऊपर ऊपर पानी के ऊपर ऊपर ऐसे ही बह रहे होते हैं, उनका कोई वेट नहीं होता, वो ऐसे ही भूसा से होते हैं, वो निकल बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो एक ही जरब में वो टूट टूट जाएंगे। उनको बस एक ही जरा सी देर होगी, छोटा सा इम्तिहान आएगा, उनको आपको बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब इम्तिहान पड़ गया, कुरान करूं कि ये करूं, दिल कहेगा कुरान करूं, ये भी होगा नहीं थोड़े पैसे कमा लो, रोज रोज तो ये चांस नहीं मिलता। उस वक्त क्या इंसान के अंदर एक कश्मकश जारी है, फिर वो क्या फैसला करता है। अब जाहिर है एक जमीर नाम की चीज तो अंदर है ना, अब कोई खैर तो अंदर थी जो इंसान इस तरफ आया, उसे कहा कि मैं सीखता हूँ, तो अब वो जो अंदर खैर है ना वो उसको भी चैन से नहीं बैठने दे रही, और ये जो लालच है इसने भी इसकी नींद हराम की हुई है कि पैसे कमा ही लूं तो अच्छा, कितनी जरूरतें मेरी पूरी हो जाएंगी, कितने मेरे काम हो जाएंगे। तो फिर इंसान क्या फैसला करता है, तो कोई बात नहीं अभी मैं स्टूडेंट नहीं रहती, अभी मैं चलो सुन लिया करती हूँ और या अपनी पेस पे मैं करती रहूंगी, मैं कौन सा छोड़ रही हूँ। शैतान देखे ऐसा बहकाता है ना इंसान को, ये छोड़ना थोड़ी है तुमने, कौन छोड़ने को कह रहा, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बस अपनी पेस पे करते रहेंगे ना, साथ साथ जॉब भी चलती रहिए भी चलता रहे, दोनों साथ करेंगे। आहिस्ता 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 क्या होता है, वो जो नौकरी होती है वो गालिब आ जाती है। अब जाहिर है कुरान से एक दफा एक क्लास स्किप की, फिर आगे फिर दो क्लासेस स्किप की, फिर उसके बाद जाहिर आप दिल पे गर्द पड़ना शुरू हो गई है, गर्द पड़ना शुरू हो गई, वो जो दिल की धुलाई हुई भी थी, धुला हुआ था दिल, शफाफ था, अब वो जो आवाज अंदर से आ रही थी ना वो बड़ी स्ट्रांग थी पहले, कि नहीं इसको नहीं छोड़ना। अब क्या आ रही, अब तो इतनी क्लासे मिस हो ही गई हैं, अब क्या फायदा, अब मैं जाऊंगी भी तो कौन सा मुझे समझ आने, और मैं तो सबक भी नहीं सुना सकूंगी, मैं तो बहुत काफी पीछे रह गई। अब मेरे ख्याल में जब नया कोर्स स्टार्ट होगा ना फिर मैं जाऊंगी, चलो फिर उसके इंतजार में बैठ जाऊँ, पता नहीं जिंदगी इतनी मोहलत दे के ना दे, सेहत इतनी मोहलत दे के ना दे, और वो इस इंतजार में चले जाते। तो ये एक रिवायत आपको सुनाती हूँ, इसमें ये है कि अहले बुसरा में आपस में मुजाकरा हो रहा था, बाज ने कहा कि इल्म माल से अफजल, बाज ने कहा माल इल्म से बेहतर। आखिरकार उन्होंने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल है उनकी तरफ एक आदमी भेजा कि आप फैसला करें कि कौन सी चीज बेहतर। तो इब्ने अब्बास ने फरमाया कि इल्म जो है वो तो अंबिया की मीरास है और माल फिरौनों की। दूसरा ये कि इल्म तेरी हिफाजत करता है और माल की तो खुद हिफाजत ये करनी पड़ती है। तीसरी बात ये कि अल्लाह ताला इल्म की दौलत, अब ये गौर से सुनिएगा, अल्लाह ताला इल्म की दौलत अपने महबूब बंदों को देता है और माल सबको ही देता है, चाहे वो उसके पसंदीदा हो चाहे ना पसंदीदा हो, बल्कि जिनसे मोहब्बत नहीं होती उनको माल ज्यादा दे देता है। सूरह ज़ुख़रुफ़ में है ना कि अगर ये बात तय ना होती कि तमाम आदमी एक ही तरीके पर हो जाएंगे तो अल्लाह ताला जो कुफर करने वाले हैं उनके घरों की छतों को चांदी की बना देता और सीढ़ियां सोने की बना देता, सीढ़ियां भी इस तरह बना देता है सिद्धा सूरह ज़ुख़रुफ़ में। तो फरमाया फिर के चौथी बात ये कि इल्म खर्च करने से कम नहीं होता, माल कम हो जाता है। पांचवी बात ये कि मालदार मर जाता है तो इसका तज़किरा भी साथ ही खत्म हो जाता है, और इल्म वाला फौत हो जाता है तो इसका जिक्र बाकी रहता है। और छठी बात ये कि माल वाला मर जाता है लेकिन इल्म वाला जिंदा रहता है, जैसे आज सहाबा कराम इमाम बुखारी और अइम्मा कराम उनका जिक्र आज भी जिंदा है। और इससे पता चलता है कि कितना भी माल आपको मिल जाए, कितना भी माल मिल जाए, लेकिन ये इल्म इसका मुकाबला कोई माल नहीं कर सकता। हज़रत अली फरमाते हैं लोग तीन तरह के, आलिम और मुतअल्लिम और बाकी आम मखलूक। आलिम और मुतअल्लिम जो है ना ये तो दोनों निजात के रास्ते पे, और बाकी जो लोग हैं वो ऐसे हैं कि हर आवाज के पीछे चल देते हैं, हर हवा के रुख पे मुड़ जाते हैं। ये घटिया किस्म के लोग हर एक आवाज के पीछे चल पड़ते हैं। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ तशरीफ फरमा थे, तीन आदमी हाजिर हुए, तीन आदमी आए। अब ये देखिए, ये स्टूडेंट्स की आपको किस्म यहाँ पे पता चलेंगे। एक ने तो हल्का में थोड़ी सी जगह देखी, वहां बैठ गया। दूसरा लोगों के पीछे बैठ गया जाके, और तीसरा उसने देखा इतना रश है, चलो मैं वापिस ही चलता हूँ, वापिस लौट के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू से फारिग हुए तो फरमाया, मैं तुम्हें इन तीनों का हाल बताता हूँ। हमारे भी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना, तीनों तरह के होते हैं। एक आगे बढ़ के आने वाले, एक वो थोड़ा पीछे होकर बैठ गए, बस मैं एक इतफाक किया कि मैं पीछे ही ठीक हूँ, और कुछ तो चले ही जाते हैं। तो पहले ने तो अल्लाह की तरफ जगह पकड़ ली, तो अल्लाह ने उसको जगह दे दी। दूसरे ने अल्लाह से हया की ताकि लोगों को तकलीफ ना दे, तो अल्लाह ने भी उससे हया वाला मामला फरमाया, फिर वो वहीं बैठ गया, वहीं का हो गया। तीसरे ने मुंह फेरा, तो अल्लाह ताला ने भी उसके मुंह फेर दिया। देखिए, जो इस हल्के से मुंह मोड़ के चला गया, अल्लाह ने भी उसके मुंह मोड़ दिया। हम उनमें से ना हो जो इस इल्म से मुंह मोड़ने वाले। किसी दाना का कौल है कि दुनिया में अल्लाह की एक जन्नत है, जो उसमें चला गया बस इसके फिर मजे ही मजे। तो पूछा गया कि वो कौन सी मजलिस है, वो कौन सी जगह है जो दुनिया में अल्लाह की जन्नत है। कहा, जो इल्म की मजलिस है। इल्म की मजलिस है ना, जैसे हम इस वक्त एक इल्म की मजलिस है, ये दुनिया में अल्लाह की जन्नत है, इसमें मजे ही मजे। तो फिर इसको छोड़ के कौन जाना चाहेगा। जरूर। अच्छा, एक और हदीस जो आप सबके लिए बहुत ही, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही प्यारी हदीस है ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन उलमा की, इल्म वालों की स्याही जो है ना, इंक जिससे आप लिखते हैं, अपने नोट्स लिख रहे हैं, अपना इल्म लिख रहे हैं, और शुहदा के खून का मुआजना किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा दोनों को। और हसन बसरी का कॉल है कि फिर उलमा की स्याही भारी हो जाएगी शुहदा के खून पर। वो ना इतनी बड़ी वैल्यू है इन वाले की, स्याही की, कि शहीद जो है वो अपनी जान दे के, अपना खून दे के अल्लाह के रास्ते में अपनी सच्चाई को, यानी उसकी तस्दीक करता है। और जो इल्म वाला है उसका कलम चलता है, तो उसकी वजह से दुनिया के लोगों की जहालत दूर होती है, कईयों का फायदा होता है। शहीद अपनी जान दे के गवाही देता है कि अल्लाह बहुत बड़ा, और इल्म वाला अपने कलम के जरिए गवाही देता है कि अल्लाह बहुत बड़ा। बशर्ते कि वो ऐसा ना हो कि वो बस नोट्स की सूरत में पढ़ा ही रहे और उसको ही दीमक खा जाए, उसके बाद कभी खोले ही ना कि हमने कभी लिखा क्या था। लिखने का तो बड़ा शौक हो कि भर भर के कॉपियां रखे जा रहे हैं, हर जगह लिख रहे हैं, उसके बाद वो पता ही नहीं है कि किधर, या उसके बाद पढ़ा ही ना जाए कि मैंने लिखा क्या था। अच्छा, ये जो हदीस मैंने आपको पहले ही बताई कि उसका ही आगे कंटिन्यूशन थोड़ी सी और है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस इल्म को इसके उठ जाने से पहले पहले हासिल कर लो। इसका उठ जाना अहले इल्म के खत्म होने के जरिए होगा। फिर आपने अपनी बड़ी उंगली और शहादत की उंगली को उठा के फरमाया, ये देखिए, ये बड़ी उंगली और शहादत की उंगली दोनों को उठा के फरमाया, आलिम और मुतालिम। आलिम और मुतालिम क्या है, मतलब जो टीचर और स्टूडेंट है, एक इल्म देने वाला और एक इल्म लेने वाला, दोनों में भलाई है। इन दो उंगलियों की तरह ये साथी हैं, यानी जिसको इल्म की तलब होती है ना, वो इल्म वाले के साथ रहता है। तो ये दोनों उंगलियों की तरह ना ये साथी हैं। अच्छा, फिर आगे हदीस सुने, बाकी लोगों में कोई भलाई नहीं है, गौर से सुने, बाकी लोगों में कोई भलाई नहीं, यानी या तो कोई इल्म सीखने वाला बने या फिर सिखाने वाला बने, लेकिन जो ना सीख रहा है ना सिखा रहा है उसमें कोई भलाई नहीं। चाहे वो बड़ा समझदार समझा जाए, बड़ा PhD है, बड़ा मालदार है, बड़ा नामवर है, बड़ी शोहरत है, बड़ा नेक समझा जाता है, मगर रब की नजरों में उसका कोई मकाम नहीं। और ये गौर से वो लोग भी सुने जो कहते हैं हम सोशल वर्क करना चाहते हैं, सोशल वर्क बहुत करते हैं, हम इधर जाते हैं, हमारी भाग दौड़ फलानी जगह, गाड़ी ले ले, सारा दिन भागते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अब ये मैं नहीं बता रही आपको, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। आलिम और मुतालिम दोनों में भलाई है और इनके सिवा बाकी लोगों में कोई भलाई नहीं है। सबसे पहले आपका अव्वलीन काम क्या है? इल्म सीखने वाले बने, अगर आपको आता है तो सिखाने वाले बने, कुछ तो बने, आता नहीं है तो सीखो, लेकिन किसी एक कैटेगरी में जरूर अपने आप को शामिल रखो। आप बाकी कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपने इस काम को छोड़ दिया ना तो भलाई पे नहीं, चाहे कितने ही आपके सोशल वर्क है। अब इन अपने कामों को भाग दौड़ के अंदर इसको पीछे ना करो, इसको हमेशा नंबर वन प्रायोरिटी पे रहना। उसके बाद आप भले करें जितने आपके पास वक्त है, इंशाल्लाह शौक से करें, लोगों की भी खिदमत करें और भी काम करें, जरूर सोशल वर्क करें, लेकिन इसको छोड़ के नहीं। अच्छा, फिर एक और हदीस इसी तरह की है, दुनिया और दुनिया वाले सब लानत जदा है सिवाय सिवाय अल्लाह का जिक्र और उसका दम भरने वाले और आलिम और मुताल्लिम। सुन लिया आपने? सब के बारे में फरमाया दुनिया दुनिया वाले सब लानत जदा है, मलऊन है। क्या होता है लानत जदा होना? यानी अल्लाह की रहमत से दूर है, अल्लाह की रहमत से महरूम है ये लोग, सिवाय जो अल्लाह का जिक्र करने वाले, उसका दम भरने वाले हैं, जो आलिम है, इल्म देने वाला है या इल्म सीखने वाला है, सिखाने वाला और सीखने वाला। तो आप क्या, एक किस चीज में भाग दौड़ आपकी ज्यादा होनी चाहिए? फलां की हेल्प कर दूं वो अच्छी अच्छा काम है, लेकिन इसको छोड़ के नहीं। फलां के लिए मैं कोई चीज बना दूं या फलां के लिए मैं किसी काम आ जाऊं, लेकिन इसको छोड़ के नहीं। क्लास का कोई काम कर लूं, इसको छोड़ के नहीं, पहले ये। हाँ, फिर आपके पास फुर्सत है तो इंशाल्लाह और नेकियां करें, कोई हद नहीं है। और याद रखिएगा हदीस में कि शैतान के लिए एक इल्म वाला 1000 आबिदों से ज्यादा सख्त है, यानी एक इल्म वाले को काबू करना ना उसके लिए, 1000 आबिदों को काबू करना उसके लिए आसान है, एक इल्म वाले को काबू करना उसके लिए मुश्किल है। जितना आपका इल्म बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह, शैतान के लिए काबू करना उतना ही मुश्किल हो। अब इब्ने मसूद का कॉल है, ये फरमाते हैं इल्म जरूर हासिल करो, मुझे उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इल्म वालों की इज्जत देखकर अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाले भी ख्वाहिश करेंगे कि काश वो उलमा बना के उठाए जाते, काश वो भी इल्म वाले हो। और देखें एक और बहुत अहम हदीस है, तिर्मिज़ी की है, और हारिस फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, देखा कुछ लोग बाज मसलों में झगड़ा कर रहे हैं, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का जमाना था, भी जाके हजरत अली से फरमाया कि ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया इनको क्या हो गया, ये क्या बातें होने लगी? फरमाने लगी मैंने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, ये सुन लो, खबरदार रहो, अनकरीब एक बहुत बड़ा फितना सर उठाएगा। तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, या रसूलल्लाह इस फितने में निजात कैसे होगी, क्या जरिया निजात होगा? फरमाया अल्लाह की किताब। यानी उस वक्त में भी अल्लाह की किताब थी फितनों में निजात का जरिया, तो आज तो हम इतने बड़े बड़े फितनों को फेस कर रहे हैं, आज हमें निजात कैसे मिलेगी? इस हदीस की रोशनी में देखिए, अल्लाह की किताब। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें तुमसे पहले गुजरे हुए लोगों के हालात हैं, बाद वाले लोगों की खबरें हैं, तुम्हारे आपस के मामलात का फैसला है, ये दो टोक बात है, कोई हंसी दिल लगी नहीं है। यदि कोई भी इसको हंसी दिल लगी समझ के ना आए, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है यहाँ पे, कि हम बोर हो जाते हैं, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। ये एंटरटेनमेंट की बुक नहीं है। जो सरकश इसको छोड़ेगा, अल्लाह उसकी कमर तोड़ेगा। जो इसको छोड़ के किसी और बात को जरिया हिदायत बनाएगा, अल्लाह उसको गुमराह कर देगा। ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है, ये हिकमत भरी याद दहानी है, यही सिराते मुस्तकीम है। इसके होते हुए ख्वाहिशात गुमराह नहीं करती, जुबानें लड़खड़ाती नहीं है, और इल्म वालों का दिल इससे कभी नहीं भरता, कभी जी नहीं भरता। ये नहीं वो कभी कहते एक दफा पढ़ लिया आप काफी हो गए, इससे तो जी भरेगा ही नहीं। इसको बार बार दोहराने से इसकी ताजगी कभी नहीं जाती। देखिए ये हदीस है, और ना कभी पुराना महसूस होता है कि हमने तो दो दफा चार दफा छह दफा पढ़ लिया था। अब लोग बात करते हैं हमने एक दफा पढ़ तो लिया, अब और क्या पढ़े। ओहो, आप अगर आप ये समझते हैं कि आपने इसको पढ़ लिया, इसके आलिम हो गए, तो बड़ी नादानी है, बहुत बड़ी नादानी है। क्योंकि इल्म वाला जो होता है ना, अहले इल्म, उसका तो जीव से कभी भरता ही नहीं, इसकी ताजगी कभी खत्म होती ही नहीं, ये कभी पुराना होता ही नहीं। इसकी अजायब, ये आगे हदीस है, इसके अजायब कभी खत्म नहीं होंगे। यानी जब पढ़ेंगे ना आप, इसके अजायब और से और आपके सामने निकलते आएंगे, नई से नई बातें आएंगी, ये नया लगेगा। आप ये ना समझे कि फिर दोबारा हम वही कुरान पढ़े, नहीं, समझ लें दोबारा नए सिरे से पढ़ रहे हैं कि नया एक कुरान पढ़ रहे हैं। यानी जैसे मैंने पहले कभी पढ़ा ही नहीं, इस तरह से दोबारा पढ़े। क्योंकि जब आप ये सोचते ना, मैंने तो पहले भी पढ़ा हुआ, सारा इंटरेस्ट और सारा आपका वो जो जो शर शौक ही खत्म हो जाता था, मुझे तो पहले ही आता है सारा, तो फिर इसका मतलब है कि मुझे आप क्या जरूरत है। अब मैं तो कुछ सुनू ना सुनू कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं इसको नया समझती। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी पुराना नहीं होता, इसके अजायब कभी खत्म नहीं होते। और एक आदमी ने ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बात कही थी कि ये कुरान पढ़ने वाले बड़े पेटू होते हैं, यानी बड़े खाने पीने के शौकीन होते हैं। जैसे आज भी कई लोग कहते हैं ये मुल्ला हैं बड़े ये हलवों के शौकीन और इतना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को इतना बुरा माना था कि उससे दोबारा उससे मुंह फेर लिया, और उसने कहा कि मैंने तो बस ऐसे ही मजाक में ये बात कह रहा था, मैं तो बस ऐसे दिल लगी कह रहा था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उससे कोई बात नहीं सुनी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी का कजावा पकड़े हुए पत्थरों पे घिसटता जा रहा था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कोई बात नहीं सुन रहे थे। तो इसको इस मजाक या इसके पढ़ने वालों का मजाक का निशाना बनाना, ये ऐसे ही है जैसे कुरान को मजाक का निशाना बनाना। अभी किसी को कहना तुम तो मुलानी हो गई हो, तुम तो बस इसी के पीछे हो गई हो, अभी तुम्हें आया नहीं है, कितनी नालायक हो, बार बार वही पढ़ती जा रही हो। आप चाहे मजाक में कह रहे हो, दिल लगी कर रहे हो, ये दिल लगी करने की किताब नहीं है। जिसने इसको छोड़ के किसी और को रहनुमा बनाया ना, अल्लाह उसको गुमराह कर देता है। ये नसीहत है। तो कुछ लोग बस बरकत के हसूल के लिए इसको पढ़ना चाहते हैं या पढ़वाना चाहते हैं, ठीक है, ये उनकी मोहब्बत है, मोहब्बत अपनी जगह है। मगर इस कुरान को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये अज़िक्र है, जिक्र याद दिहानी, नसीहत। तो जिसका नाम ही नसीहत है, उसे नसीहत ही नहीं अगर मिल रही तो फिर क्या फायदा। सिर्फ आप मोहब्बत ही करते जा रहे हैं, जो असल मकसद ही उसका था कि आप इसे नसीहत लें। तो और नसीहत लेके फिर अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई करें। और आप देखेंगे, फील करेंगे कि जब आप इसकी मजलिस में होते हैं तो ईमान की, दिल की कैफियत बहुत बदली हुई होती है, और जब 2 दिन 4 दिन 6 दिन इसे दूर रहते हैं तो कैफियत मुख्तलिफ हो जाती है। तो इससे जब तक आप नसीहत लेते रहेंगे ना, ये आपको देता रहेगा। इसको छोड़ देंगे तो ये नसीहत करना भी छोड़ देंगे। तो जो सही रास्ते पे, सिराते मुस्तकीम पे चलना चाहता है, वो इसकी तरफ आए। ये है, ये कुरान है सिराते मुस्तकीम, ये है सीधा रास्ता, यही आपको रहनुमाई करेगा।
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.